हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना किचन में जाकर अकेले में गीता से चाची और उनके परिवार के बारे में पूछती है। गीता ने उसे बताया, ये आदित्य की चाची हैं और एक दो बार पहले भी यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन आदित्य भैया की इन सब से बिल्कुल नहीं बनती और उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह है। इसीलिए आदित्य भैया जब वहाँ होते हैं तो ये लोग यहाँ नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो आदित्य भैया इन्हें यहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भैया यहाँ नहीं हैं, और ऐसे ही हम किसी को जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना भाभी। सुनैना गीता की पूरी बात सुनकर चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाती हुई बोली, आप ठीक कह रही हैं दी, और मैं वैसे भी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रही। मैं तो बस इन्हें ठीक तरह से जानती नहीं तो आपसे पूछ रही थी। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि कोई तो बड़ा रीज़न होगा जिससे आदित्य इन लोगों को पसंद नहीं करता और ऐसे अकेले सबसे दूर और सबसे कटा कटा रहता है। सुनैना सारी चीज़ों को जोड़कर अपने मन में काफ़ी कुछ सोचते हुए ये बात बोली, हाँ भाभी मुझे भी यही लगता था। लेकिन सुनैना की बात सुनकर गीता बोल ही रही थी कि तभी स्वीटी भी सुनैना के पीछे ही किचन में आ गई। उसे देखकर गीता एकदम झुक हो गई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने इशारे से सुनैना को भी बता दिया कि स्वीटी उसके पीछे खड़ी है। अरे स्वीटी, तुम यहाँ? कुछ चाहिए क्या? मुझे बोल देती। सुनैना पीछे मुड़कर स्वीटी की तरफ देखते हुए उससे बोली, अरे भाभी प्लीज़ आप तो क्षितिज बोलो ना, बाकी सब तो वैसे भी स्वीटी स्वीटी करके मुझे डायबिटीज़ करवा देंगे, इतनी भी स्वीट नहीं बनना मुझे। सुनैना के स्वीटी बुलाने पर स्वीटी थोड़ा सा खींचते हुए सुनैना से कहती है। सुनैना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उसका गाल खींचते हुए बोली, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम हो ही इतनी स्वीट कि स्वीटी नाम ही सूट करता है तुम पर, और इसीलिए तो बाकी सब भी तुम्हें यही बुलाते हैं। वैसे बताया नहीं, क्या चाहिए था तुम्हें? कुछ भी नहीं भाभी, मैं तो बस आपकी हेल्प करने आई थी। बोलो, कोई हेल्प चाहिए या क्या आपको मेरी? स्वीटी ने थोड़ा सा उचक कर सुनैना और गीता के पीछे झांकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम तो मेहमान हो, तुम क्यों हेल्प करोगी? और वैसे भी गीता दी है ना, ये वैसे भी मुझे ही कुछ करने नहीं देती तो तुम्हें क्या करने देंगी? स्वीटी की बात सुनकर सुनैना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोली। सुनैना स्वीटी को किचन से लेकर बाहर की तरफ जाने लगी, क्योंकि स्वीटी के सामने तो वो गीता से कोई बात भी नहीं कर पाती। ओके भाभी, बट मैं हॉस्टल में अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे अपने सारे काम करने की आदत है, और मैं ना कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट होने आई हूँ। सुनैना के साथ वापस हॉल की तरफ आते हुए स्वीटी ने थोड़ा सा खुश होते हुए सुनैना को बताया। स्वीटी सुनैना से ये सारी बातें वापस हॉल की तरफ आते हुए बोल रही थी। उसकी माँ और उसका भाई भी ये सारी बातें सुन चुके थे। उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए सुनैना की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, मैं तो तुमसे और आदित्य से मिलने आई थी। साथ में स्वीटी का कॉलेज यहाँ से पास में है और हमारा घर काफ़ी दूर आउट ऑफ सिटी पड़ जाता है, तो उसे रोज़ आने जाने में इनकन्वीनियंस होगा, इसलिए मैंने सोचा जब यहाँ अपना घर है तो क्यों स्वीटी फिर से किसी हॉस्टल में रहेगी। स्वीटी और उसकी माँ दोनों की ही बात सुनकर सुनैना को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन वो ऐसे ही मना भी तो नहीं कर सकती थी। आखिर वो उन लोगों को कितना जानती थी और उनका आदित्य के साथ रिलेशन कैसा है, इस बारे में भी वो श्योर नहीं थी। आदित्य अगर यहाँ पर होता तो क्या डिसीजन लेता, और वो जो भी डिसीजन लेता, लेकिन सुनैना भला कैसे उसके बिहाफ पर अभी कोई डिसीजन ले सकती थी, ये सुनैना को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आदि तो अभी यहाँ है नहीं, मेरा मतलब है वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो आप एक बार उनसे पूछ लेती? उनकी बात सुनकर सुनैना ने थोड़ा सा सोचते और अटकते हुए कहा, अरे उससे क्या पूछना है बेटा, अब तेरी शादी हो गई है उससे, तो ये घर तेरा भी तो है, और वो वैसे भी स्वीटी के ये कभी मना नहीं करता। सुनैना की बात सुनकर चाची जी तुरंत ही बोल पड़ी, अच्छा ठीक है, मैं ही कॉल करके एक बार उनसे पूछ लेती हूँ या फिर बता ही देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर। बोलते हुए सुनैना अपना मोबाइल फोन निकालने लगी तो स्वीटी बीच में ही थोड़ा सा मायूस होते हुए बोल पड़ी, रहने दो भाभी, कोई बात नहीं, अगर आप और भैया नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो कोई बात नहीं मम्मी, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी ना, क्यों भैया और भाभी को परेशान करना बेवजह। स्वीटी का इस तरह मायूस और उतरा हुआ चेहरा देखकर सुनैना को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अब तक आदित्य का नंबर डायल कर चुकी थी। आदित्य का फोन रिंग भी हो रहा था, जैसा कि वो पिछले दो दिनों से कर रहा था। इसलिए सुनैना ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और स्वीटी की तरफ आती हुई बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है स्वीटी, तुम बिल्कुल रह सकती हो, इतना बड़ा घर है, आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे या तुम्हारे भैया को, और तुम होगी तो मुझे भी कोई साथी मिल जाएगा, सारा दिन बोर हो जाती हूँ मैं भी। सुनैना की ये बात सुनकर स्वीटी की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उनका बेटा आराम से उसी तरह सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चलाता रहता है जैसे कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो कि स्वीटी यहाँ रहे या हॉस्टल में या फिर कहीं और। वो बस अपने मोबाइल के साथ ही बिजी था और बाकी किसी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल स्वीटी, अच्छी तरह से कंपनी देना अपनी भाभी को और काम में भी मदद कर देना। और तू यहाँ क्या बैठा है अभी तक? चल विशाल, घर वापस भी तो चलना है हमें, हम तो वैसे भी बस स्वीटी को छोड़ने आए थे। सुनैना की बात सुनकर चाची ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर उससे वहाँ से चलने के लिए बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, रात का खाना खाकर जाते ना आप लोग भी। चाची जी के वहाँ से जाने वाली बात सुनकर सुनैना भी उन्हें फॉर्मेलिटी के तौर पर रात के खाने के लिए रोकते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, हम फिर कभी आएंगे ना, तब साथ में डिनर कर लेंगे और आदि भी होगा, तब तो उससे मिलना भी हो जाएगा, अभी हम दोनों चलते हैं, वापस घर जाने में भी काफी टाइम लगना है, यहाँ से काफी दूर है हमारा घर, मैंने बताया ना अभी तुम्हें। सुनैना के रोकने पर चाची जी उसे पूरी बात बताते हुए बोली, तो फिर सुनैना भी उनकी बात मान जाती है और दोबारा उन्हें रुकने के लिए नहीं बोलती और वो अपने बेटे विशाल के साथ वहाँ से चली जाती हैं। स्वीटी अपने साथ दो बड़े बड़े बैग लेकर आई थी। सुनैना ने पहले तो उन बैग पर ध्यान ही नहीं दिया था और वो बैग भी हॉल में ही रखे हुए थे। थैंक यू सो मच भाभी, कौन से कमरे में शिफ्ट हो जाऊँ मैं? अपने बैग उठाते हुए स्वीटी ने सुनैना से पूछा। यहाँ पर नीचे दो रूम है खाली, देख लो जो भी तुम्हें ठीक लगे। सुनैना ने दोनों रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है भाभी, मैं ये सामने वाला ले लेती हूँ और आपका आदि भैया का बेडरूम ऊपर है ना? स्वीटी ने जैसे कंफर्म करने के लिए सुनैना से पूछा तो सुनैना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और स्वीटी के हाथ से एक उसका बैग लेती हुई बोली, चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ शिफ्ट होने में और तुम्हारा सामान भी अरेंज करवा दूंगी। रहने दीजिए भाभी, मैं कर लूंगी, आप पहले ही थकी हुई लग रही हो, वैसे कहाँ गई थी आप, मॉम के सामने तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। स्वीटी ने सुनैना के हाथ से अपना बैग वापस ले लिया और उससे पूछने लगी, वो आज मेरा लास्ट एग्जाम था तो बस अभी कॉलेज से वापस आई थी और फिर यहाँ पर तुम लोग। तो स्वीटी के पूछने पर सुनैना ने उसे बताया,
एग्जाम मतलब आप स्टडी कर रही हो क्या भाभी, क्या कर रही हो आप? सुनैना ने थोड़ा सा चौंकते हुए सुनैना से पूछा। MBA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे, आज फिनिश हो गया, और तुम भी तो यहाँ से कॉलेज पास होने के लिए ही रुकी हो, तुम कौन सा कोर्स कर रही हो? सुनैना ने स्वीटी से बताया और साथ ही उसके बारे में जानने के लिए पूछा। वाओ भाभी, MBA, दैट्स ग्रेट। और एक्चुअली मैंने ना फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था कई सारे कॉलेज में, और इस कॉलेज में मेरा नाम आ गया तो मॉम ने बोला कि मैं यहाँ पर आप दोनों के साथ रह सकती हूँ क्योंकि वो कॉलेज यहाँ से पास है। तो बस उनकी बात मानने के अलावा तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से ही मेरे इस कोर्स के लिए माने हैं मॉम डैड, इसलिए मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की। स्वीटी भी सुनैना को अपनी पूरी मजबूरी भरी कहानी सुनाते हुई बोली। उसके बाद स्वीटी और सुनैना कुछ देर तक ऐसे ही बैठकर आपस में बात करती रहीं और फिर सुनैना अपने रूम में चेंज करने और रेस्ट करने के लिए चली गई। तब तक स्वीटी भी अपना साला सामान कमरे में शिफ्ट करने लगी और उसके बाद गीता के बुलाने पर उन तीनों ने साथ में डिनर किया और रात में सुनैना स्वीटी के कमरे में बैठकर ही उसके साथ बातें करने लगी। स्वीटी के आ जाने से अब सुनैना को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन आदित्य को वो अभी भी काफी मिस कर रही थी। क्रमशः